दिन भर 8 नवंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिरोध बरकरार, फडणवीस ने दिया सीएम पद से इस्तीफा, शिवसेना पर बरसे उद्धव का पलटवार।
मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं।
दूर के साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता।
गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा घेरा हटाए जाने की खबर, कांग्रेस ने बताया बदले की राजनीति।
देश ने आज राजनीतिक प्रतिशोध और व्यक्तिगत बदले की आग का एक और मंजर देखा।
और विवेचना में रेहान फजल के साथ सोशलाइट भाईचंद पटेल की बात।
हम जवान थे, लड़कियां भी जवानी थी, somehow they liked us, you know, उस वक्त रिलेशनशिप में डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं था, जॉब में डिस्क्रिमिनेशन था, पर रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन ये साफ हो गया है कि ये गठबंधन सरकार नहीं बना रही है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को पहले ही 50-50 सत्ता शेयर करने की बात बता दी थी। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राज्य में शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर कोई बात नहीं हुई थी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिशों के लिए आज आखिरी दिन है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की रेटिंग पर अपने नजरिए को बदलते हुए इसे स्थिर से नकारात्मक करार दिया है, नकारात्मक कर दिया है। इसकी वजह भारत की आर्थिक विकास की स्थिति पहले की तुलना में कम रहना बताई है। एजेंसी का कहना है कि सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर जोखिम बढ़ रहा है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए एक छात्र की मौत पर बड़े तनाव के बाद पुलिस ने शांति की अपील की है। विश्वविद्यालय छात्र की मौत के बाद शहर में सैकड़ों लोगों ने जगह जगह जुलूस निकाले। पुलिस प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया है कि चाउथ से लोग के कार पार्किंग के तीसरे फ्लोर से गिरने के समय कोई भी पुलिस अधिकारी आसपास था। कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त चाउ पुलिस द्वारा दागी गई आंसू गैस से बचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने इस मामले की सही जांच के लिए खुली अदालत में सुनवाई करवाने की बात कही है। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के कार्यकर्ता जोसेफ चेंग ने भी इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है।
Pro-democracy movement is very angry and it believes that the police is
लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के सभी लोग बहुत गुस्से में हैं और ये मानते हैं कि इसके लिए पुलिस ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। किसी भी हाल में विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार झड़पें बढ़ रही हैं और इस हिंसा को कम करने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। ये थे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के एक कार्यकर्ता के शब्द। बर्लिन की दीवार गिरने की 30वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर अमरीकी विदेश मंत्री ने रूस और चीन जैसे देशों के सत्तावाद से पैदा होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी है। बर्लिन की यात्रा पर माइक पोम्पियो ने कहा कि पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद पश्चिम का ये मान लेना गलत था कि अब हर जगह एक स्वतंत्र समाज होगा। उन्होंने कहा कि आज रूस अपने पड़ोसियों पर हमला करता है, राजनीतिक विरोधियों को मार देता है। पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही लोगों को का दमन करने के लिए खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करती है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी व्यक्त की और पोम्पियो पर शीत युद्ध की मानसिकता रखने का आरोप लगाया। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा,
Everyone in this room has a duty. We must recognize that free nations are in competition of values with those unfree nations.
यहाँ मौजूद सभी लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ मूल्य होते हैं जो अस्वतंत्र देशों के पास नहीं है। ये सच 1989 में हमारे लिए उतना साफ नहीं था, इसलिए आज 30 साल बाद हमें इसे उत्सव के साथ साथ संयम और गंभीरता से समझना चाहिए। हमने पहले जो कुछ जीता है उसे बचाए रखने में हम सबका कुछ कर्तव्य है। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर धुन साफ नहीं हुई है, लेकिन चुनाव में महायुति बनाकर उतरी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच बनी खाई आज कुछ और गहरी हो गई। दिन भर चले बैठकों के दौर के बाद शाम करीब 4 बजे देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवसेना पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवसेना की ओर से जिस तरह के बयान सामने आए हैं उससे लगता है कि वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा।
लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को अलग वोट नहीं दिया था, लोगों ने अलायंस को वोट दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लोगों के सामने गए थे। मैंने तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार हम महायुति की ही बनाएंगे। जिस प्रकार के बयानात पिछले 10-12 दिनों में शिवसेना की ओर से आए हैं, उनके नेताओं ने दिए हैं, ऐसे बयानों के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं। इस प्रकार के बयान शिवसेना के माध्यम से लगातार आए हैं।
देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा भी किया कि चुनाव के पहले शिवसेना के साथ कभी भी 2.5-2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी। सुनिए।
मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को भी ये पूछा कि मेरे पीछे या मेरे न होते हुए या किसी और माध्यम से क्या ये फैसला हुआ है और क्या उन्होंने ये शब्द दिया है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया था, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ था, कोई फैसला नहीं हुआ था।
मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के करीब 1 घंटे के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फडणवीस के आरोपों का एक एक करके जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मुझे मैं झूठा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर वो आगे जाकर भी कहेंगे कि मैं झूठा हूँ तो मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, क्योंकि झूठ के साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता।
इसके पहले जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत एनसीबी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर रहे थे। राउत ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं।
डेमोक्रेसी में जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाते हैं, वो मुख्यमंत्री होता है, विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं भी कहता हूँ मेरे पार्टी की तरफ से कि हम भी ये कहेंगे अगर हम चाहे तो सरकार बना सकते हैं और शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सकता है।
ये थे संजय राउत। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक किस दिशा में जा रही है बताने के लिए मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी मयूरेश कोन्नूर जी। स्वागत है मयूरेश आपका।
जी जी जी
जी। वार और पलटवार, महाराष्ट्र को किस दिशा में ले जा रही है बीजेपी और शिवसेना की यह तकरार?
अभी नजदीक की दिशा देखें तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट जो है प्रेसिडेंशियल रूल वो शुरू होगा। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने के बाद उन्हें केयरटेकर सीएम बनाया गया है, तो वो एक नजदीक की दिशा में क्या होगा। अगर दूर जाते हुए हम देखें तो क्या होगा अभी भी पता नहीं चल रहा है। कुछ नए पॉलिटिकल इक्वेशंस आएंगे क्या? अगर आज दोनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, देवेंद्र फडणवीस की और उसके थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे ने जो किया, लग तो ये रहा है कि ये बड़ी लंबी लड़ाई होगी जो कुछ दिन तक महाराष्ट्र की राजनीति में चलती रहेगी।
जी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और वो अभय चौटाला की वीडियो क्लिप्स भी लेकर आए, तो उससे क्या लग रहा है कि सारे सिरे टूट गए?
सारे सिरे टूट गए ऐसा लग सकता है, अगर लेकिन दोनों ने ये कहा, वो अभी ये नहीं मानते दोनों, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, कि जो कोएलिशन है वो टूट गया है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप जरूर किए, लेकिन दोनों ये नहीं कह रहे कि कोएलिशन टूट गया और शिवसेना अभी भी एनडीए में है। लेकिन जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये शायद ये लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की अब ये एक पर्सनल दोस्ती की बात हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में होती रही पिछले 5 साल में, लेकिन अब दोनों की जो टकराव है, पर्सनल लड़ाई है, वो इसमें देख रही है। उद्धव ठाकरे ये कहते रहे कि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि उन्होंने मोदी पे हमला किया, उन्होंने अमित शाह पे हमला किया, लेकिन वो कहते रहे कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और देवेंद्र फडणवीस ने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तो इतनी पर्सनल लेवल पर ये पूरी लड़ाई अब गई,
ये पूरी लड़ाई जा चुकी है और अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। आज विधानसभा की जो मियाद है वो खत्म हो रही है। शुक्रिया मयूरेश को नूर जानकारी देने के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आज खबर यह भी आई कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है। एसपीजी सूत्रों ने बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से इसकी पुष्टि की। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने कुछ देर पहले जुबैर अहमद से बात की।
देखिए, गांधी परिवार में जो सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, इन तीनों को एसपीजी सुरक्षा मिला हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देश भर में जिन लोगों को मिला हुआ है उनमें से ये भी थे। अभी जो हमें खबरें आ रही हैं उसके अनुसार एसपीजी कवर उनसे हटा लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको इसी तरह से छोड़ दिया गया। उनको अब एसपीजी के जगह पे जेड प्लस कैटेगरी जो होती है सुरक्षा की, वो पहुंचाई जाएगी।
अब ये कवर हटाया जाएगा, दूसरा कवर दिया जाएगा, क्या उससे आप कुछ बदलाव आता हुआ देखते हैं?
सबसे पहले तो ये कि ये बदलाव हुआ क्यों, तो हमने भी अपने सोर्सेस से पता किया तो ये पहले से बात चल रही थी कि जो थ्रेट परसेप्शन पहले था उतना अब रहा नहीं, इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब इनकी जो थोड़ा सा स्केल डाउन कर दें इनकी सुरक्षा को। तो जेड प्लस में भी सुरक्षाकर्मी की संख्या 30 से ऊपर होती है और एसपीजी में भी 40-42 ऐसे होती है, लेकिन संख्या मैटर नहीं करता है। वो जैसे जैसे वो सीक्रेट सर्विस से उनको थ्रेट परसेप्शन या कुछ थ्रेट की खबर आती है तो संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो सबसे बड़ा फ़र्क मुझे लगता है वो आया है वो ये है कि जेड प्लस जो कैटेगरी सिक्योरिटी की है वो MHA के अंडर आता है, गृह मंत्रालय के अंडर आता है, और एसपीजी का तो अलग ही एक्ट था तो वो बिल्कुल अलग कैटेगरी थी और पीएमओ से उसका सीधा संबंध था। तो अब ये विदेश जाएंगे तीनों सदस्य जब भी, तो इनको गृह मंत्रालय को खबर होगी कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और ये इस पे एतराज़ उठाया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब ये खबर शुरू में आई थी कि ऐसा हो सकता है। जो भी मूवमेंट है देश से बाहर और देश के अंदर, सरकार को उसकी खबर होगी, यही फ़र्क है इसमें।
ये थे जुबैर अहमद। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शाम को गृहमंत्री अमित शाह के सरकारी घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सुनिए।
देश ने आज राजनीतिक प्रतिशोध और व्यक्तिगत बदले की आग का एक और मंजर देखा।
भारत सरकार और भारत सरकार की एजेंसियों ने खुद राहुल जी को पत्राचार कर ये कहा कि उन्हें ये जानकारी है कि उनकी जान को खतरा है, पर इन सब बातों के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ 60 दिन के अंदर कि एसपीजी की सारी रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो की सारी रिपोर्ट्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की सारी रिपोर्ट बदल गई?
ये थे रणदीप सुरजेवाला। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्दी ही फैसला सुना सकता है। इसे देखते हुए सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या इंतजाम किए गए हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और यहाँ के जो DGP हैं, पुलिस महानिदेशक, दोनों को बुलाया था कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए। क्योंकि फैसला अब ये माना जा रहा है कि कभी भी आ सकता है, इसलिए अयोध्या में सुरक्षा की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 4000 जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर तैनाती के लिए भेजा गया है। कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबी बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, DGP, मुख्य सचिव, बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की, सारे जगहों की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। ये निर्देश दिए गए हैं खासतौर पर अयोध्या में कि वहाँ शांति बैठकें आयोजित की जाए। प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कोई भी फैसला, कुछ भी आता है, किसी तरह की स्थिति कानून व्यवस्था की न बिगड़ने पाए। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। लखनऊ और अयोध्या में 2 हेलीकॉप्टर इमरजेंसी के लिए रखे रहेंगे ताकि अगर कोई इस तरह की जरूरत पड़े तो वो तुरंत उपलब्ध रहे।
ये थे समीर आत्मज मिश्र।
बीबीसी इंडिया बोल।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी क्यों हुई, नतीजों के बाद क्यों बिगड़ा गठबंधन का गणित, बीजेपी शिवसेना के लिए दोस्ती से ज्यादा कीमती क्यों हो गई मुख्यमंत्री की कुर्सी, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 9 नवंबर शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फोन करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब विवेचना। भाईचंद पटेल की गिनती भारत के चोटी के सोशलाइट्स में होती है। हाल ही में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है आई एम ए स्ट्रेंजर हियर माई सेल्फ, जिसमें उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई, वकील और संयुक्त राष्ट्र के बड़े अधिकारी बनने की कहानी को बहुत दिलचस्प अंदाज में बयां किया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं भाईचंद पटेल के लीक से हटकर जीवन के कुछ प्रसंगों पर।
प्रशांत महासागर के एक छोटे से देश फिजी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले भाईचंद पटेल को कई प्रधानमंत्रियों, महारानियों, अभिनेत्रियों, हसीन औरतों और दिलचस्प लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला है। लेखक, पत्रकार और फिल्म समालोचक भाईचंद पटेल वकील रह चुके हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक बड़े पद पर काम किया है और वो इस समय दिल्ली के टॉप सोशलाइट हैं और उनकी दी गई पार्टीज में शामिल होने के लिए दिल्ली के संभ्रांत लोगों में होड़ सी लगी रहती है। मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, मनीला और काहिरा में रह चुके भाईचंद पटेल पिछले लगभग 20 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी फिजी की नागरिकता बरकरार रखी है। भाईचंद पटेल बताते हैं।
मैं देखो इंडिया में पढ़ा था, यहाँ छोटी उम्र में आया था, 18-19 साल का था जब मैं आया था पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर लंदन गया, वहाँ लंदन में 5 साल मैं स्टडी की, वहाँ भी मुझे लगा कि शायद रह जाओ नहीं जाओ, मैंने कुछ कन्विंस नहीं हुआ। मैं फिजी का नेशनल हूँ, फिजी का नेशनल रहूँगा, शायद रहूँगा नहीं वहाँ, क्योंकि छोटी सी जगह है ना, 1 मिलियन पॉपुलेशन भी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज कम है वहाँ। हर 2 साल में जाता हूँ कि एक बार वहाँ का कोई जाए वो भूल नहीं सकते वो जगह को, बहुत साफ सुफ है, फ्रेंडली है। हम फिजी में जब मैं बड़ा हुआ था, मैं हिंदी बोलता हूँ पर हिंदी मेरी भाषा नहीं थी, भोजपुरी थी। मेरी माताजी गुजराती थी और मेरे पिताजी भी गुजराती थे, पर उनके साथ भी मैं भोजपुरी बात करता था।
दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम करने के बाद भाईचंद पटेल ने पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। उन्हें लंदन में बिताए वो दिन अभी तक याद है।
इंग्लैंड बहुत बदल गया, उस वक्त बहुत डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, कहीं हमें रहने की जगह चाहिए तो बोर्ड लिखा होगा बाहर के वैकेंसी है, अगर घंटी बजाओ तो कहते चला गया। क्या हुआ कि 1971 में युगांडा से बहुत इंडियंस लंदन आए, और पहले के जो इंडियंस गए थे और वेस्ट इंडीज के लोग, वो सब गरीब थे, फैक्ट्री में काम करते थे, पर ये मिडिल क्लास जो आई ईस्ट अफ्रीका से, वो ब्रिटेन को दिखाया हम क्या कर सकते हैं, पूरी हाई स्ट्रीट को चेंज कर दिया। और मेरा बहुत रिश्तेदार लंदन में रहते हैं, और मुझे एक बार किसी ने कहा कि हम अगर बैंक में जाएं तो हमें आराम से लोन मिलती है, अंग्रेजी को थोड़ा मुश्किल पड़ती है।
भाईचंद बताते हैं कि एलएसी की लड़कियां वर्किंग क्लास से आती थी, अपने कपड़ों और शक्ल सूरत पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी और हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाती थी।
हम जवान थे, लड़कियां भी जवानी थी, समहाउ दे लाइक्ड अस, यू नो, फॉरेनर्स बाहर के आए थे जो पाकिस्तान से, इंडिया से, ईस्ट अफ्रीका से, उस वक्त रिलेशनशिप में डिस्क्रिमिनेशन कोई कुछ नहीं था, जॉब में डिस्क्रिमिनेशन था, पर रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, घर बुलाते थे हमें, पेरेंट्स को मिलाते थे, पर शादी करने की जरा मुश्किल होती थी उस वक्त भी। पेरेंट्स अभी भी जैसे यहाँ है वैसे वहीं है, कि पेरेंट्स लाइक देयर चिल्ड्रन टू मैरी विद इन द कम्युनिटी, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते थे पेरेंट्स के लिए, साइंस मेरी बेटी शादी कर ले, फिजी जाए या इंडिया जाए, तो दे आर डिस्करेजिंग दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एंड द ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैं एलएससी में भी था और इनर टेम्पल में भी था। इनर टेम्पल में मैंने 12-8 लोग की, वहाँ की लड़की थोड़ा अपर क्लास की थी और एलएससी की लड़की थोड़ा मिडिल क्लास की थे, दोनों सब अच्छे थे। मैं मजाक कर रहा था तो एक बार, वो तो ठीक था पर गंदे नहीं थे वो लोग।
उसी दौरान भाईचंद पटेल की मुलाकात खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह से हुई, वो दोस्ती अभी तक बरकरार है। ಇದನ್ನು 9 hours ಟು ರಾಮಾ ಕಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೈನಾ ಬೇಕರ್ ಕೋ ಡೇಟ್ ಕರ ರಹೆ ಥೆ. ವೋ ಏಕ್ ರೆಸ್ತರಾ ಮೇ ಬೈಠೆ ಥೆ, ಭಾಯಿಚಂದ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗಯೆ, ಔರ್ ಜಬ್ ವೋ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ವಾಪಸ್ ಲೌಟೆ ತೋ ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಡೈನಾ ಬೇಕರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ನದಾರತ್ ಹೋ ಗಯೆ ಥೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ.
ಡೈನಾ ಬೇಕರ್ ಆಯಿ ಥಿ, ವೋ ಕಾಫಿ ಮಶಹೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಥಿ, ವೋ ಬಾಂಬೆ ಆಯಿ ಥಿ, ಔರ್ ಭಾಯಿಚಂದ್ ನೇ ಉಸ್ಕೋ ಬುಲಾಯಾ ಥಾ ಏಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ ಬಾಂಬೆ ಕಾ ಏಕ್ ಸೀ ಲೌಂಜ್, ಔರ್ ಉಧರ್ ಕಾಫಿ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ತೆ ಥೆ ಚಾಯ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಾ ಬಿಯರ್ ಯಾ ಐಸೆ ಕುಛ, ಔರ್ ಮೈ ಭಿ ಆ ಗಯಾ. ವೋ ಸೋಚ ರಹಾ ಥಾ ಕಿ ವೋ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಡೈನಾ ಬೇಕರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕಹೀಂ ಬಾಹರ್ ನಿಕಲ್ ಜಾಯೆಗಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಬಾಂಬೆ ದಿಖಾಯೆಗಾ ಔರ್ ಭಿ ಶಾಯದ್ ಕುಛ ಹೋ ಸಕೆಗಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್. ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಥಿ ಉಸ್ ಟೈಮ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್, ಔರ್ ಮೈ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಕಾಮ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ಜಬ್ ವೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗಯಾ ಭಾಯಿಚಂದ್, ತೋ ಡೈನಾ ಬೇಕರ್ ನೆ ಮೇರಾ ಖ್ಯಾಲ ಸೋಚ ಲಿಯಾ ಕಿ ಮೈ ಭಾಯಿಚಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ನಹೀಂ ಜಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ತೋ ಉಸ್ನೆ ಮುಜೆ ಕಹಾ ಹಮ್ ಇಧರ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಜಾಯೆ. ತೋ ಹಮ್ ನಿಕಲ್ ಗಯೆ ಔರ್ ಮೈ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಪೆ ಮೈನೆ ಉಸ್ಕೋ ಬಾಂಬೆ ದಿಖಾಯಾ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಪೆ.
ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆ ಜರಿಯೆ ಭಾಯಿಚಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಕಿ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆ ಮುಲಾಕಾತ್ ಹುಯಿ ಔರ್ ವೋ ಉನ್ಕೆ ತಾ ಉಮ್ರ ಮುರೀದ್ ರಹೆ. ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾ ಏಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಥಾ, ವೋ ಲೋಗೋ ಕೋ ಠೀಕ್ 7 ಬಜೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ ಬುಲಾತೆ ಥೆ, 8 ಬಜೆ ಖಾನಾ ಪರೋಸ್ತೆ ಥೆ, ಔರ್ ಠೀಕ್ 9 ಬಜೆ ಸೋನೆ ಚಲೆ ಜಾತೆ ಥೆ. ಸಮಯ ಖತ್ಮ ಹೋನೆ ಪರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಉನ್ಹೊನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗ್ಯಾನಿ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆ ಭೀ ಜಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಹ ದಿಯಾ ಥಾ. ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಏಕ್ ಕಿಸ್ಸಾ ಸುನಾತೆ ಹೈ, ಜಬ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಉನ್ಕೆ ಜನ್ಮದಿನ ಪರ್ ಉನ್ಕೆ ಘರ್ ಆಯೆ ಥೆ, ಲೇಕಿನ್ ತಬ್ ತಕ್ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆ ಸೋನೆ ಕಾ ವಕ್ತ ಹೋ ಚುಕಾ ಥಾ.
ಮೇರಾ 50ವಾ ಸಾಲ್ ಕಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೋನೆ ಲಗಾ ಥಾ. ಮೇರಿ ಏಕ್ ದೋಸ್ತ್ ಥಿ ಜೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಹೋತಿ ಥಿ ಔರ್ ವೋ ಭಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಥೋಡಿ ಬಹುತ್ ಜಾನ್ತಿ ಥಿ. ಉಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತ್ ನೇ ಕಹಾ, ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಉಸ್ಕೋ ಕ್ಯೂ ನೀ ಬುಲಾ ಲೇತೆ ಆಪ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಔರ್ ಮೇರಾ ಜವಾಬ್ ಉಸ್ ಆಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆ ಕೆ ಹಿ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್. ಬಸ್ 2 ಘಂಟೆ ಪಹಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೋಗ್ ಆಗೇ, ಯೇ ಮೇರೆ ಫಾದರ್ ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ ಥೆ. ಫಿರ್ ವೋ ಆಯಾ ಔರ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಾಥ್ ಮಿಲಾ, ಬಹುತ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಥಾ. ಮೇರೆ ಫಾದರ್ ಕೆ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ತೋ ಉಸ್ನೆ ಬಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಭಾಷಣ ದಿಯಾ, ಕ್ಯಾ ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ, ಯೋರ್ ಮದರ್, ಯೋರ್ ಬ್ರದರ್, ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾವ್ ಸೋ ಆನರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಕಹಾ ಕೆ ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್.
ಆಮ ಲೋಗೋ ಕೋ ಶಾಯದ್ ಯೇ ಸುನ್ಕರ್ ಯಕೀನ್ ನಹೀ ಹೋಗಾ ಕಿ ಏಕ್ ಸಮಯ ಮಶಹೂರ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ರೇಖಾ ಭಾಯಿಚಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇ ಶಾದಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಿ ಥಿ.
ಉಸ್ ವಕ್ತ್ ಉನ್ಕಿ ಲೈ ಜರಾ ಮೆಸಪ್ ಥಿ, ಉನ್ಕಾ ಜೋ ಏಕ್ ಬಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕುಛ್ ರಿಲೇಶನ್ ಥಾ, ವೋ ಟೂಟ್ ಗಯಾ ಔರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮಿಸರಬಲ್, ಬಡೆ ಮಿಸರಬಲ್ ಥಿ. ಅಗರ್ ಮೇರಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮುಜೆ ಶಾದಿ ಕರ್ನೆ ಕಹೆ, ಮೈ ಶಾದಿ ಕರ್ನೆ ತಯಾರ್ ಹೂಂ, ಕಿಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇ ಕಹಾ ಥಾ ಉಸ್ನೆ, ತೋ ಉಸ್ನೆ ಸುನಾ ಹೋಗಾ ಕಿಸಿ ಐಸೆ ಕಿ ಮೈ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ರಹತಾ ಥಾ, ಮೈ ಸೆಪರೇಟ್ ಥಾ, ಮೇರಿ ವೈಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮೇ ರಹತಿ ಥಿ, ಮೈ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ರಹತಾ ಥಾ, ಮೈ ಯು ಎನ್ ಮೇ ಥಾ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ತೋ ಉಸ್ನೆ ಬಿನಾ ರವಾನೆ ಸೇ ಬಾತ್ ಕಿ ಕಿ ಮುಜೆ ಇಸೆ ಮಿಲ್ನಾ ಹೈ. ತೋ ವೋ ಆಯಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಆಯಿ ಉನ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆ ಸಾಥ್, ಔರ್ ಮೀನಾ ರಮಾನಿ ಉನ್ಕೆ ಘರ್ ಪೆ ಹೀ ಮುಜೆ ಬುಲಾಯಾ, ಉನ್ಕೊ ಬುಲಾಯಾ, ಸರಿ ಬಾತ್ಚೀತ್ ಹುಯಿ. ಮುಜೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ದೇಖಾ ಕಿ ಯೇ ಐಡಿಯಾ ಯೇ 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 ನಹೀಂ ಬನೆ ಜಮೇಗಾ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಥೋಡಾ ಟ್ರೆಜಡಿ ಹೋ ಗಯಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮೇರೆ ದೂಸರೇ ದಿನ ಯಾ ತೀಸರೇ ದಿನ ಮುಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೋ ಮಿಲಾ, ವೋ ಮೇರಾ ದೋಸ್ತ್ ಥಾ. ತೋ ಮೈನೆ ಕಹಾ ರೇಖಾ ಆಯಿ ಥಿ ಔರ್ ವೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಢೂಂಡ್ ರಹಿ ಹೈ, ತೋ ಬಡಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಹೋ ಗಯಾ. ತೋ ಬಿನಾ ರಮಾನಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಗಯಾ ಔರ್ ಕಹತಾ ಮುಜೆ ರೇಖಾ ಸೇ ಮಿಲಾ ದೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಉಸ್ನೆ ಪ್ಲೀಡ್ ಕಿ. ತೋ ವೋ ಮಿಲ್ ಗಯೆ, ಮಿಲೇ ದೋನೋ, ಶಾದಿ ಭಿ ಕಿ 6-7 ಮಹೀನೆ ಬಾದ ಉನ್ಕಿ ಮೌತ್ ಹೋ ಗಯಿ, ಸುಸೈಡ್ ಕಮಿಟ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಉಸ್ನೆ. ರೇಖಾ ಕೋ ಭಿ ಲಗಾ ಕಿ ಯೇ ಶಾದಿ ಮುಜೆ ನಹೀ ಕರ್ನಿ ಥಿ. ಔರ್ ಮುಕೇಶ್ ತೋ ಫ್ಯಾನ್ ಥಾ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಥಾ.
ಭಾಯಿಚಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಕಾ ಆತ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತ ಐ ಎಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ತರಹ ಕೆ ಕೈ ಕಿಸ್ಸೋ ಸೇ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಭಾಯಿಚಂದ್ ಕಿ ಇಸ್ ಕಿತಾಬ್ ಕಿ ಖಾಸಿಯತ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಬೇಬಾಕಿ. ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕಹತೆ ಹೈ,
ವೆರಿ ರೀಡಬಲ್, ಐಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಲೈಟ್ ರೀಡ್, ಬಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಚ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹೈ. ಯು ಕುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೆಟ್ ಗೋ.
1971 ಕೆ ಭಾರತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧ ಕೆ ಸಮಯ ಭಾಯಿಚಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇ ತೈನಾತ್ ಥೆ. उस दौरान सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि समर सेन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि आगा शाही दिन में तो बहुत कड़वी बहस करते थे, लेकिन शाम को बार में एक साथ शराब पीते थे। उसी दौरान भाई चंद को भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह की उस बात से बहुत धक्का लगा था जब उन्होंने भाषण देते हुए अपने एक साथी से जग से अपने गिलास में पानी उड़ेलने के लिए कहा था।
या इंडिया में तो होता ही ऐसे ना, कोई सर्वेंट को कह दो, कोई जूनियर कह दो मुझे पानी दो, चलता है। वो टेलीविजन में देखो, वो बैठा है आगे सरन सिंह पाकिस्तान साइड से आगे कर रहा था, तो घूमा पीछे कोई एम्बेसडर बैठा था, इंडियन का एम्बेसडर टू द यूएन, उनको कहा पानी डाल दे। तो वो बेचारा उठा, आगे गया, सरन सिंह के सामने जग था, ग्लास था, पानी डाल के पीछे जाके बैठ गया। वो अपने सामने है, कितना टाइम लगता पानी अपने पानी लेने के ऊपर, इधर एटीट्यूड आई डिडंट लाइक।
पटेल दिल्ली में अपनी दी गई पार्टियों के लिए मशहूर है। उनकी हर साल दी जाने वाली वैलेंटाइंस डे और क्रिसमस पार्टी में 27 से 92 साल की उम्र के दिल्ली के चुनिंदा लोग शरीक होते हैं।
आई लाइक पीपल, एंड देखो मैं अकेले है दिल्ली में, तो लगभग हफ्ते में 3-4 बार तो बाहर जाना होता ही है। तो जब मैं बाहर जाऊँ, कोई मुझे बुलाता है, तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि उनको भी बुलाऊँ। तो मैं छोटी पानी नहीं बनाता हूँ, कम से कम 12 का टेबल है, 12 होते हैं, और वो भी कम होती है। मैं पानी बनाता हूँ 40-50 लोगों को बुलाता हूँ। मेरे पास बड़ी गार्डन है, वेरी गुड कुक, घर का खाना, केटरिंग मैं कभी किया ही नहीं आज तक। वैलेंटाइन पार्टी में लगभग 150 से 200 लोग आते हैं। गार्डन में कुर्सियाँ लगाते हैं, आराम से बैठते हैं और घर का खाना देते हैं।
गेस्ट का चुनाव किस तरह से करते हैं?
इंटरेस्टिंग पीपल, ओनली इंटरेस्टिंग पीपल। मेरा एक एडवांटेज दिल्ली में ये है कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मेरे को ये नहीं कि रिश्तेदार को नहीं बुलाया तो उसको बुरा लगेगा। तो जो कोई मेरे घर में आएगा, आई लाइक दैट मैन और वुमन, दैट्स व्हाई ही इज देयर।
पटेल को फिल्में देखने का बहुत शौक है। मदर इंडिया और हाल ही में रिलीज हुई बधाई हो उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसके अलावा पटेल पुरानी हिंदी फिल्मी गानों के भी दीवाने हैं।
मुझे बहुत शौक है, यहाँ पर गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, पुरानी फिल्मों के गीत, इवन क्लासिकल म्यूजिक आई लाइक, बट फ्रॉम सैगल टाइम, गीता दत्त, नौशाद, सी रामचंद्र, इसकी ये जो म्यूजिक बनाते थे।
तो एक दो गाने जो आप बहुत हॉन्ट करते हो, जो आप बिल्कुल हर वक्त सुनना चाहें?
तू गंगा की मौज में जमुना का धारा,
गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा।
लेकिन भाईचंद पटेल को इस बात का मलाल है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जो उस समय हुआ करता था जब वो जवान हुआ करते थे।
मैं बहुत दुखी हूँ, जिस डायरेक्शन ये देश जा रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये देश सबका देश था, हम जब से कौन हिंदू हो, कौन मुसलमान, कौन पारसी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आज तो मारने लगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और कोई कहे ये देश हिंदुओं का है, ये मैं कभी मानूंगा नहीं। हम सब मिल के बनाए ये देश, और जो भी आए हम सब बाहर से आए, हम ये देश सबका है। अगर ये माने सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो देश आगे बढ़ेगा। अगर हम कहेंगे ये जाति को नौकरी नहीं मिलेगा, ये जाति ये खाता है, हम ये खाते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं चलेगा।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब मुख्य समाचार सृष्टि श्रीवास्तव से।
बीबीसी समाचार। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की रेटिंग पर अपने नजरिए को बदलते हुए इसे स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। चीन की सरकार ने लोगों को सिगरेट पीते हुए दिखाने वाले कार्यक्रमों और फिल्मों को कम से कम करने की योजना की घोषणा की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जल्द ही इस पर फैसला करने वाला है कि क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन द्वारा किए गए मुकदमे पर विचार करना उसकी न्यायिक शक्ति में है या नहीं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए एक छात्र की मौत के बाद बड़े तनाव के बाद पुलिस ने शांति की अपील की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक महाराष्ट्र की राजनीति समेत तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। नमस्कार।